शांति
ओम शांति।
ये है 20-10-90 का ट्रैफिक क्लास 9 नंबर के रजिस्टर में नंबर के।
दिस इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ 2010-90 89th पेज इन द रजिस्टर नंबर 9।
गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है।
द सॉन्ग इज हैविंग फाउंड यू वी हैव फाउंड द वर्ल्ड।
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है।
हैविंग फाउंड यू वी हैव फाउंड द वर्ल्ड।
जहान कैसे पा लिया है।
हाउ हैव वी फाउंड द वर्ल्ड।
ऐसा कौन है जिसे पाके सारी दुनिया पाली।
हु इज द वन हुम बाई फाइंडिंग हिम वी हैव फाउंड द एंटायर वर्ल्ड।
क्योंकि सारी दुनिया बीज में सनाई हुई है।
बिकॉज द होल वर्ल्ड इज मर्ज्ड इन द सीड।
और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप।
एंड द फादर इज द सीड फॉर्म ऑफ द होल ह्यूमन वर्ल्ड।
बाप है दो बेहद के।
देर आर टू अनलिमिटेड फादर्स।
एक आत्माओं का बाप परमात्मा शिव।
वन इज द फादर ऑफ द सोल्स द सुप्रीम सोल शिव।
ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल।
द पॉइंट ऑफ लाइट द सुप्रीम सोल।
और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप जीवात्मा।
एंड द अदर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन सोल्स जीवात्मा दैट इज अ लिविंग बीइंग।
परमात्मा शिव को जीवात्मा नहीं कहेंगे।
द सुप्रीम सोल शिव वोंट बी कॉल्ड अ जीवात्मा।
तो मनुष्य आत्माओं में जो बाप है।
सो द वन हु इज द फादर अमंग द ह्यूमन सोल्स
मनुष्य सृष्टि का बीज।
द वन हु इज द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड।
अगर उस बीज रूप बाप को पहचान लिया।
इफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट सीड फॉर्म फादर
जो मनुष्य सृष्टि का बीज है तो परमात्मा के स्वरूप की विशेष प्राप्ति हो गई।
द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड देन यू हैव रिसीव्ड द स्पेशल अटेनमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सोल।
क्योंकि सामान्य नॉलेज में तो आती है बेसिक नॉलेज में बात आती है परमात्मा क्या है ज्योतिबिंदु है।
बिकॉज इन द जनरल नॉलेज इन द बेसिक नॉलेज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज द सुप्रीम सोल इज दैट ही इज द पॉइंट ऑफ लाइट।
ये सामान्य नॉलेज हुई।
दिस इज द जनरल नॉलेज।
विशेष नॉलेज नहीं हुई।
इट इजंट स्पेशल नॉलेज।
क्यों
व्हाई।
क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही ज्योतिबिंदु नहीं है लेकिन मनुष्य सृष्टि की सारी ही आत्माएं ज्योतिबिंदु है।
इट इज बिकॉज नॉट ओनली द सुप्रीम सोल इज द पॉइंट ऑफ लाइट बट ऑल द सोल्स ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड आर पॉइंट्स ऑफ लाइट।
मनुष्य आत्मा ही नहीं
नॉट ओनली ह्यूमन सोल्स
कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी की आत्माएं ज्योतिबिंदु है।
द सोल्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स एनिमल्स बर्ड्स एंड एवरीवन आर पॉइंट्स ऑफ लाइट।
तो परमात्मा ज्योतिबिंदु है इससे उसकी पेकुलरिटी का कोई पता नहीं चलता।
सो जस्ट बाय सेइंग दैट द सुप्रीम सोल इज द पॉइंट ऑफ लाइट वी डोंट कम टू नो एनीथिंग अबाउट हिज पर्टिकुलरिटी।
कौन सा ज्योतिबिंदु परमात्मा है।
विच पॉइंट ऑफ लाइट इज द सुप्रीम सोल।
हम किस ज्योतिबिंदु को याद करें।
विच पॉइंट ऑफ लाइट शैल वी रिमेम्बर।
तो हम समझे कि परमात्मा को हमने याद किया।
सो दैट वी मे बिलीव दैट वी हैव रिमेम्बर्ड द सुप्रीम सोल।
क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब आत्मा एक जैसी।
इट इज बिकॉज ऑल द पॉइंट सोल्स आर अलाइक।
तो यहाँ विशेष बात इस गीत के द्वारा क्लियर होती है क्योंकि गीत भी बाबा के बनवाए हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में।
सो अ स्पेशल पॉइंट इज क्लियर्ड हियर थ्रू दिस सॉन्ग बिकॉज बाबा हैड दोज सॉन्ग्स मेड अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान इन द पाथ ऑफ भक्ति।
तो तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है।
सो हैविंग फाउंड यू वी हैव फाउंड द वर्ल्ड।
ऐसा कौन सा बीज है जिसमें सारा जहान समाया हुआ है।
विच इज द सीड इन विच द होल वर्ल्ड इज एनक्लोज्ड।
वो है मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता।
दैट इज प्रजापिता द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड।
उस प्रजापिता रूपी बीज में सारी मनुष्य सृष्टि का सार समाया हुआ है।
द एसेंस ऑफ द होल ह्यूमन वर्ल्ड इज कंटेन्ड इन दैट सीड लाइक प्रजापिता।
जैसे कोई वृक्ष होता है उसका बीज कितना छोटा होता है।
टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री इट्स सीड इज सो स्मॉल।
बनियन ट्री की मिसाल दी जाती है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ से।
द एग्जाम्पल ऑफ द बनियन ट्री इज गिवन फॉर द ट्री लाइक ह्यूमन वर्ल्ड।
तो बीज बहुत छोटा और झाड़ बहुत बड़ा लेकिन उस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है।
सो द सीड इज वेरी स्मॉल एंड द ट्री इज वेरी बिग बट द होल ट्री इज कंटेन्ड इन द सीड।
इसलिए उस संस्कृत की गीता में भी कह दिया है न अहम देशु ते मै।
दैट इज वे इट हैज ऑल्सो बीन सेड इन दैट संस्कृत गीता न अहम देशु ते मई।
माना
मीनिंग
मैं उन पत्तों में नहीं समाया हुआ हूँ, लेकिन वे पत्ते वे पूरा झाड़ टहनियाँ डालें जड़ें सब मेरे में समाई हुई।
आई एम नॉट मर्ज्ड इन दोज लीव्स बट दोज लीव्स द होल ट्री इंक्लूडिंग स्टेम्स ब्रांचेस रूट्स ऑल आर मर्ज्ड इन मी।
तो कौन सा ऐसा बीज है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि रूपी आत्माओं का भाव स्वभाव संस्कार समाया हुआ, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा।
सो विच इज द सीड इन विच द बेस्ट एंड द वर्स्ट फीलिंग्स नेचर एंड संस्कार ऑफ ऑल द सोल्स इन द ह्यूमन वर्ल्ड आर मर्ज्ड।
तो वो बीज है प्रजापिता।
दैट सीड इज प्रजापिता।
उस प्रजापिता रूपी बीज में ही परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है।
इट इज दैट सीड प्रजापिता हिमसेल्फ इन हुम द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव द पॉइंट ऑफ लाइट एंटर्स एंड इज रिवील्ड।
वरना उस प्रजापिता की भी पहचान नहीं हो सकती।
अदरवाइज दैट प्रजापिता कांट बी रिकग्नाइज्ड ईदर।
क्योंकि 84 जन्मों में जन्मण के चक्र में आने वाली राम कृष्ण की सोल पहचानने में नहीं आती।
इट इज बिकॉज इन द 84 बर्थ्स द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्ण हु कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आर नॉट रिकग्नाइज्ड।
ये तो परमात्मा सुप्रीम सोल बाप जब संगम युग में आते हैं तो हम बच्चों को अपनी आत्माओं का और अपनी पहचान देते हैं।
इट इज द सुप्रीम सोल फादर हु गिव्स हिज चिल्ड्रन द रिकग्निशन ऑफ आर सोल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हिमसेल्फ When he comes in the consciousness age.
तो तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है।
So, having found you, we have found the world.
क्या शिव ज्योति बिंदु को पाके जहान पा लिया है?
Is it on finding Shiv, the point of light, that we have found the world?
हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग।
Ours is definitely the प्रवृत्ति मार्ग, that is household path.
आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है।
इट इज द प्रवृत्ति ऑफ बोथ द सोल एंड द बॉडी। प्रवृत्ति मीनिंग कंपेनियनशिप।
परमात्मा शिव आत्मा है।
द सुप्रीम सोल शिव इज द सोल।
और प्रजापिता मनुष्य शरीर धारी वो रथ है परमात्मा का।
एंड प्रजापिता द वन हु हैज अ ह्यूमन बॉडी इज द चैरियट ऑफ द सुप्रीम सोल।
दोनों को मिल करके परमात्मा का स्वरूप बनता है जो पहचाना जाता है।
Combining both, the form of the supreme soul that is recognized is created.
वरना तो पहचान में परमात्मा आ नहीं सकता।
Otherwise, the supreme soul can't be recognized.
तो उस परमात्मा बाप को पहचान करके हमने जैसे सारा जहान पा लिया।
So, having recognized the supreme soul father, it is like we have found the whole world.
जैसे बीज मुट्ठी में है तो सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है।
इट इज लाइक इफ द सीड इज इन योर हैंड द होल ट्री कम्स टू योर हैंड।
इसमें बोलने का नहीं रहता।
देयर इज नथिंग टू से अबाउट दिस।
ये समझने की बात है।
दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड।
तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है।
हैविंग फाउंड यू वी हैव फाउंड द वर्ल्ड।
मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं।
The sweet spiritual children understand that they are becoming deities once again.
संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं।
They are becoming completely voiceless.
बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो।
The father comes and says, children gain victory over lust.
अर्थात पवित्र बनो।
Meaning become pure.
क्यों कहते हैं?
Why does he say this?
काम जीते जगत जीत।
काम जीते जगत जीत। Meaning Gaining victory over lust is gaining victory over the world.
Indriya jite jagat jeet.
Indriya jite jagat jeet. Meaning, gaining victory over the Indriya is gaining victory over the world. Indriya, parts of the body used to perform actions and the sense organs.
Indriyon ko jisne jeet liya, usne sari rajai jeet li.
The one who has conquered the Indriya has acquired the whole kingship.
बच्चों ने गीत सुना।
द चिल्ड्रन हर्ड द सॉन्ग।
अब फिर से बच्चों की स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं।
नाउ वंस अगेन द चिल्ड्रन हैव रीगेन्ड अवेयरनेस। वी टेक द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर।
कोई हद की राजा ही नहीं लेते।
वी डोंट टेक एनी लिमिटेड किंगशिप।
कोई डिस्ट्रिक्ट की राजाई या कोई गांव की राजाई या कोई एक देश की राजाई नहीं।
वी डोंट टेक द किंगशिप ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, विलेज और अ कंट्री।
सारे विश्व की बादशाही हम बाप से लेते हैं।
वी टेक द किंगशिप ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम द फादर।
ये हुआ बेहद का वर्षा जो कोई हमसे छीन नहीं सकता।
दिस इज द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस विच नो वन कैन स्नैच अवे फ्रॉम अस।
वो राजाइयां तो दूसरा राजा आक्रमण कर देता है, छीन लेते हैं।
अनदर किंग अटैक्स एंड स्नैचेस दैट लिमिटेड किंगशिप फ्रॉम अस।
ये राजाई तो हमको ऐसी मिलती है जो 2500 वर्ष हमसे कोई छीन नहीं सकता।
दिस किंगशिप दैट वी रिसीव इज सच दैट नोबडी कैन स्नैच इट अवे फ्रॉम अस फॉर 2500 ईयर्स।
वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं।
देर इज नो वन एल्स देर हु वुड स्नैच द किंगशिप फ्रॉम अस।
कहाँ?
वेर?
जिस नई दुनिया में बाप हमको ले जा रहे हैं, वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला दुश्मन होता ही नहीं।
द न्यू वर्ल्ड वेर द फादर इज टेकिंग अस, देर विल बी नो एनिमी हु वुड स्नैच आवर किंगशिप देर।
उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, अर्थात वहाँ कोई दूसरे विचार वाला, दूसरी मत वाला, दूसरे धर्म वाला, दूसरी भाषा वाला कोई द्वैतवादी होगा ही नहीं।
दैट इज कॉल्ड द नॉन ड्यूअल किंगडम, मीनिंग देर विल बी नो वन विद डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट लैंग्वेज, देर विल बी नो वन विद ड्यूअलिटी एट ऑल।
ये तो जब द्वापर आता है तब द्वैत शुरू होता है, तब दो दो मतें शुरू होती है, तब लड़ाई होती है।
Dualism starts when the copper age arrives. It is then that the two opinions come into being and a fight takes place.
तब एक दूसरे की राजाइयां छीनी जाती हैं।
It is then that the people snatch their kingship from each other.
तो बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है।
Then later on the kingdom of Ravan belongs to someone else.
राम राज्य है अपना और रावण राज्य है पराया, दूसरे का।
The kingdom of Ram is ours and the kingdom of Ravan is paraya, that is that which belongs to others, someone else's.
अभी तुम समझ रहे हो?
Now you understand.
क्या समझ रहे हो?
What do you understand?
कि हम अब पराये राज्य में बैठे हैं या अपने राज्य में बैठे हैं?
Are you sitting in the kingdom of someone else or your own kingdom?
पराये रावण राज्य में बैठे।
You are sitting in someone else's kingdom, Ravan's kingdom.
अभी रावण का राज्य है।
Now it is the kingdom of Ravan.
रावण का कंट्रोल है।
It is Ravan's control.
अभी हम समझ रहे हैं इस बात को कि ये रावण का राज्य है।
Now we understand that this is the kingdom of Ravan.
पराया राज्य है।
It is someone else's kingdom.
राम राज्य नहीं है।
It isn't the kingdom of Ram.
अर्थात राम की आत्मा के हाथ में राज्य अभी नहीं आया है।
इट मीन्स दैट द किंगडम हैजंट कम इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल ऑफ राम येट।
राज्य किसका चल रहा है?
हुज रूल इज इट एट प्रेजेंट?
रावण का राज्य चल रहा है।
इट इज रावण्स रूल।
कोई कहे क्यों?
समवन मे से व्हाई?
जब निराकार राम साकार राम के तन में प्रवेश कर गया तो राम का राज्य होना चाहिए।
When the incorporeal Ram has entered the body of the corporeal Ram, it should be the kingdom of Ram.
कम से कम हम बच्चों के ऊपर तो राम का राज्य होना चाहिए।
At least for us children, it should be the rule of Ram.
दुनिया की बात छोड़ दी जाए।
Leave aside the topic of the world.
क्योंकि दुनिया भी तो तीन बन गई हम बच्चों के हिसाब से।
Because there are three worlds for us children.
एक दुनिया तो 500 करोड़ की है ही है।
One world is the world of the 5 billion human souls that already exists.
चलो वहाँ तो रावण राज्य है।
All right, there is the rule of Ravan there.
दूसरी दुनिया आधारभूत आत्माओं की, जड़ों पर बैठी हुई ब्राह्मण आत्माएं।
The second world is of the base-like souls, the Brahmin souls sitting on the roots.
जिन ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई।
द ब्राह्मिन्स हु वर क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा।
चलो उसमें भी मान लिया जाए कि उसमें भी अनेक धर्म की आधार मूर्त आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी है, तो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्मा।
ऑल राइट, इवन इन दैट वर्ल्ड इफ वी कंसिडर दैट द बेस लाइक सोल्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस हैव गैदर्ड, देन देर आर द सीड फॉर्म सोल्स इन द एडवांस पार्टी।
तो बीज रूप आत्मा तो कम से कम राम राज्य में है कि वो भी नहीं है।
सो एट लीस्ट द सीड फॉर्म सोल्स आर इन द किंगडम ऑफ राम, और aren't they in Ram's kingdom either?
कहेंगे वो भी नहीं।
It will be said that they aren't in the kingdom of Ram either.
क्यों?
Why?
क्योंकि बीज रूप आत्माओं में हर प्रकार के बीज भरे पड़े हैं।
It is because all sorts of seeds are present among the seed form souls.
सारी दुनिया के बीज, अच्छे से अच्छे बीज और बुरे से बुरे बीज, हर धर्म के बीज इन एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं में मौजूद है।
द सीड्स ऑफ द होल वर्ल्ड, द बेस्ट एज वेल एज द वर्स्ट सीड्स, द सीड्स ऑफ ऑल द रिलीजियंस आर प्रेजेंट अमंग द सीड फॉर्म सोल्स ऑफ द एडवांस पार्टी।
और जब तक बीज का सुधार नहीं होता तब तक वृक्ष का सुधार नहीं हो सकता।
एंड अंटिल द सीड इज ट्रांसफॉर्म्ड द ट्री कांट बी ट्रांसफॉर्म्ड।
तो बीजों में भी जो बीज रूप आत्माओं की माला है जिसे रुद्रमाला कहा जाता है।
सो अमंग द सीड्स टू द रोजरी ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स विच इज कॉल्ड द रुद्रमाला,
वो रुद्रमाला सब धर्मों के बीजों की है।
दैट रुद्रमाला कंसिस्ट ऑफ द सीड्स ऑफ ऑल द रिलीजियंस।
और सब धर्मों के बीज जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए, अर्थात जिस बीज में जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, वो अपने देह अभिमान का छिलका शो जरूर करेगा।
And the seeds of all the religions, whoever is wearing the overcoat of whichever religion, meaning the husk of whichever religion has covered a seed, it will certainly show its husk of body consciousness.
और show करेगा तो उसके part की प्रत्यक्षता जरूर होगी।
And if it shows the husk, its part will surely be revealed.
Show न करे ऐसा नहीं हो सकता।
It isn't possible that it wouldn't show the husk.
क्यों?
Why?
क्योंकि बाप है सबसे बड़ा दर्पण।
It is because the father is the biggest mirror.
और बाप के जो रहने का स्थान है संगम युग में, जिसे मधुबन कहते हैं।
And the place where the father lives in the confluence age, which is called Madhuban.
चाहे वो ब्राड मधुबन हो बाद में, और चाहे वो मिनी मधुबन हो जो बच्चे तैयार करते हैं।
Whether it is the broad Madhuban that is formed later on, or whether it is the mini Madhuban that the children create.
दोनों ही मधुबन में बाप का आरसी रखा हुआ है।
The mirror of the father is kept in both Madhubans.
जिस मधुबन को बाबा ने बताया है कि मधुबन एक शीशे का महल बन जाएगा।
For Madhuban, Baba has said that Madhuban will become a palace of mirrors.
जिसमें कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकेगी।
Where no soul will be able to hide.
तो जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए है वो लबादा उसका प्रत्यक्ष जरूर होगा, वो छिलका जरूर क्लियर हो जाएगा।
So whoever is wearing the overcoat of whichever religion, that overcoat will definitely be revealed. That husk will definitely become clear.
वो छिलका जब तक उतरता नहीं है ज्ञान योग की पावर से, तब तक वो बीज रूप आत्मा भी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं कही जा सकती।
Until that husk is removed through the power of knowledge and yoga, those seed form souls cannot be said to be firm in the ancient deity religion.
क्योंकि दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है।
Because they are covered with the covering of body consciousness of other religions.
और जब दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है तो ऐसी आत्माएं अपना देह अभिमान जरूर दिखाएंगे।
And when they are covered with the covering of body consciousness of other religions, then such souls will definitely show their body consciousness.
उन्हें बार बार बाप की स्मृति भूल जाएगी।
They will forget the remembrance of the father again and again.
क्योंकि जहाँ आत्मा अभिमान है वहाँ बाप है।
It is because where there is soul consciousness, there is the father.
जहाँ देह अभिमान है वहाँ बाप हो नहीं सकता।
Where there is body consciousness, there can't be the father.
इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं रूहानी बाप, कैसे बच्चों को समझा रहे हैं।
That is why Baba says in the Murli daily, the spiritual father is explaining to what kind of children?
Ruhani bachchon ko samjhay rahe.
He is explaining to the spiritual children.
Arthat, jismani stage mein rehne wale bachchon ko nahi samjhate.
That means he doesn't explain to the children who stay in a body conscious stage.
Deh abhiman mein rehne wale bachchon se baat bhi nahi karte.
He doesn't even talk to the children who stay body conscious.
Ruhani bap, ruhani bachchon se baat karte.
The spiritual father talks to the spiritual children.
क्योंकि देह अभिमान में रहने वाले बच्चे तो बाप को मानेंगे ही नहीं.
Because the children who stay body conscious won't accept the father at all.
अपने ही चलाएंगे.
They will do just as they please.
अपनी मत देंगे.
They will give their own directions.
तो बाप का कहना है कि बच्चे अब द्वैत राज्य समाप्त होने वाला है. द्वैत राज्य समाप्त होने वाला है. अब द्वैत राज्य आने वाला है.
So what the father wants to say is, children, the kingdom of Dvaita, that is duality, is going to end, and the Advaita, that is non-dual kingdom, is about to come.
हम फिर से भारत को श्रीमत पर voiceless बनाए गए.
We are making Bharat voiceless again through Srimat.
Nirvikari बनाए गए.
We are making it Nirvikari, that is voiceless.
Nirvikari है राम राज्य में और विकारी है रावण राज्य.
People are voiceless in Ram's kingdom and they are vicious in Ravan's kingdom.
Unchite unch Bhagwan to sab kahenge.
Everyone will say the highest on high is God.
Ravan rajya wale bhi kahenge unchite unch Bhagwan.
The ones belonging to Ravan's kingdom will also say the highest on high is God.
Aur Ram rajya wale bhi kahenge unchite unch Bhagwan.
And the ones belonging to Ram's kingdom will also say the highest on high is God.
भगवान को तो सब ऊंच मानते हैं. क्यों?
Everyone considers God to be high. Why?
राम राज्य वाले देवता हैं तो ऊंच मानने तो ठीक.
If the ones belonging to Ram's kingdom, the deities, consider God to be high, it is logical.
रावण राज्य वाले रावण को ऊंच माने.
The ones belonging to Ravan's kingdom should consider Ravan to be high.
भगवान को ऊंच क्यों मानते हैं?
Why do they consider God to be high?
है? क्योंकि रावण राज्य वालों को भी पता चल जाएगा कि रावण का भी रूप धारण करने वाला वो राम की ही आत्मा है.
It is because the ones belonging to Ravan's kingdom will also come to know that the one who takes on the form of Ravan also is the soul of Ram himself.
जो सब रावण संप्रदाय को सुधार देती.
Who reforms all those who belong to Ravan's community.
इसलिए मुरली में बोल दिया राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कलयुग के अंत में कंस बनता है.
This is why it has been said in the Murli, Ram becomes Ravan and Krishna becomes Kans at the end of the Iron Age. Kans meaning a villainous character of the epic Mahabharat and maternal uncle of Krishna.
इसलिए उस बीज में सब कुछ भरा पड़ा है. अच्छे से अच्छा भी है तो बुरे से बुरा भी है.
That is why everything, the best as well as the worst, is contained in that seed.
राम राज्य मेरा है तो रावण राज्य मेरा नहीं है क्या?
If the kingdom of Ram is mine, isn't the kingdom of Ravan mine?
इसलिए बाप मुरली में बार बार कहते हैं.
That is why the father says in the Murli again and again.
बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ.
Children, your father has come.
मतलब क्या हुआ?
What does that mean?
किस बात में बाप?
He is the father in what aspect?
All round बाप आया हुआ.
The all round father has come.
तुम्हारी अच्छी करनी में भी बाप और तुम्हारी बुरी करनी का भी बाप आया हुआ.
He is your father when you perform good deeds and even when you perform bad deeds, he is your father.
तुमको सुधरना पड़ेगा.
You will have to reform.
अच्छे तरीके से नहीं सुधरोगे.
If you don't reform through a positive method,
ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, बड़ी माँ के प्यार से नहीं सुधरोगे.
The senior mother in the form of Brahma, ब्रह्म माँ, if you don't reform through the love of the senior mother,
देवताई पने से नहीं सुधरोगे तो असुरों का भी बाप आया होगा.
if you don't reform yourselves through divinity, then the father of even the demons has come.
Asuron ko asuriyat se sudhar lega.
He will reform the demons through devilishness.
Isliye git kya chala hai?
This is why which song has been played?
Tumhe paake humne jahan pa liya.
Having found you, we have found the world.
Devataon ka bhi baap hai, to asuron ka bhi baap aaya hua hai.
He is the father of the deities as well as the father of the demons. He has come.
Unche unche bhagwan to sab kahenge.
Everyone will say the highest on high god.
Asur bhi kahenge to devata bhi kahenge.
The demons as well as the deities will say that.
Unko hi baap kaha jata hai.
He alone is called the father.
Jinko asur bhi maane aur devata bhi maane.
Whom the demons as well as the deities accept.
Bharatiya parampara mein aisa ek hi devata hai jo asuron mein bhi mana jata hai bhagwan ke roop mein.
In the Indian tradition there is only one deity who is accepted among the demons in the form of god.
Asur bhi uski upasana karte hain aur devtaen bhi uski upasana karte hain. Wo kaun sa devata hai?
The demons worship him as well as the deities worship him. Who is that deity?
Shankar.
Shankar.
Asuron ne bhi uski pooja ki. Devtaon ne bhi uski pooja ki.
The demons as well as the deities worshipped him.
Asuron ko bhi wo usi drishti se dekhta hai. Saman drishti se. Aur devtaon ko bhi saman drishti se dekhta hai.
He looks at even the demons with the same vision, a vision of equality, and he looks at the deities too with a vision of equality.
Asur agar himmat kare to himmate baap ba himmate bacche to madade baap.
If the demons show courage, then himmate bacche to madade baap. Meaning, if the children display courage, the father helps them.
Aur devatai bacche agar himmat kare to himmate bacche madade baap.
And if the deity children show courage, then himmate bacche madade baap.
Baap dono prakar ke bachchon ki madad karne ke liye taiyar.
The father is ready to help both types of children.
Sirf himmat ke kadam bachchon ko badhane.
The children just have to put forward the steps of courage.
Didi dadiyan dadaen aadhar murt brahmanon ki duniya mein aaj jo baithe hue hain wo kis aadhar par aage badh rahe hain.
The didis, dadis and dadas who are sitting in the Brahmin world of the root form souls today, on what basis are they moving ahead?
Himmate bacche to madade baap.
Himmate bacche to madade baap.
Bhala maya ka bhi roop koi brahman hai, sakshat maya rupini banne baithe hain, lekin himmat ke aadhar par aage badh rahe hain.
Although there is some brahmin who is the form of maya, she is sitting as the form of maya incarnate, still on the basis of courage they are moving ahead.
To jo himmat karte hain baap unko madad dene ke liye taiyar.
So whoever shows courage the father is ready to give them help.
Ibrahim, Buddha, Christ, Guru Nanak, inhone itni taqat kahan se payi jo duniya ki itni badi generation ke upar control kar baithe.
From where did Abraham, Buddha, Christ and Guru Nanak get so much power to control such a big generation, that is population of the world?
Himmat ki to baap se madad mili.
They showed courage, then they received help from the father.
To unche unche bhagwan to sab kahenge.
So everyone will say the highest on high god.
Sab mana?
Everyone means who?
Devtaen bhi kahenge to asur bhi kahenge.
The deities as well as the demons will say it.
Unko hi baap kaha jata hai jinko sab mante hain.
The one whom everyone accepts is himself called the father.
To ye bhi samjhana hai kya?
So this should also be explained. What?
Ki baap usko koi kaha jata hai jo asuron ka bhi baap ho to devtaon ka bhi baap ho.
Only the one who is the father of the demons as well as the deities is called the father.
Lakhul bachchon ka bhi baap pyar ka sagar aur fir lakhul bachchon ka bhi baap dharmraj.
He is the father of the loving children, the ocean of love, and also the father of the lawful children, Dharamraj, the chief justice.
Strict aur komal, dono ka part play karne wala ek hi baap.
It is only the one father who plays both parts, strict and soft.
Likhna bhi hai, Bharat sampoorn nirvikari swarg tha.
You should also write, Bharat, that is India, was a completely viceless heaven.
Wo ab vikari narak ban gaya.
It has become a vicious hell, that is narak now.
Narak man?
Narak means what?
Narak hi nahi kehte, rau rau narak.
It isn't called just narak, but it is called rorav narak, that is horrible hell.
Rorav narak mana, jahan keede makode rauriyate rehte hain.
Rorav narak means the place where worms and insects keep wriggling.
Rauriyat machana mana,
what does wriggling mean?
Ek dusre ko kaatte rehte hain.
They keep biting each other.
एक कीड़े ने दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा, तीसरे ने चौथे को काटा.
One worm bit a second worm, the second one bit a third one, and the third one bit a fourth worm.
तो ये विकारी नरक बन गया.
So this is a vicious hell that is created.
फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाए रहे.
Then on the basis of श्रीमत, we are making Bharat into heaven.
किस आधार पर बनाए रहे?
On what basis are we making it heaven?
Srimat par.
On the basis of Srimat.
Manushya mat par nahi.
Not on the basis of human opinions.
Didi dadi dadaon ki mat par nahi.
Not on the opinion of the didis, dadis and dadas.
Apni mat par nahi. Koi devata ki mat par nahi. Ki Shankar ki mat par ya Brahma ki mat par ya Krishna ki mat par.
Not on the basis of our own opinion, not on the basis of some deity's opinion, that you may think it to be on Shankar's direction, or Brahma's direction, or on Krishna's direction.
Nahi.
No.
Srimat, arthat jisse shresth koi mat de nahi sakta.
Srimat, meaning no one else can give a more elevated direction than this.
Us baap ki mat par hum Bharat ko swarg banaye rahe.
On the direction of that father, we are making Bharat into heaven.
बाप जो बताते हैं, उसको नोट करके, फिर उस पर विचार सागर मंथन करके लिखने में मदद करनी चाहिए.
Whatever the father says, you should note it down, and then after churning on it, you should help in writing it.
ऐसा क्या-क्या लिखें, जो मनुष्य समझे हैं भारत बरोबर स्वर्ग था.
What should we write so the human beings understand that Bharat was truly heaven?
Ravan ka rajya nahi tha.
It wasn't Ravan's kingdom.
Kab?
When?
Jab swarg tha.
When there was heaven.
Bachchon ki buddhi mein hai abhi hum Bharatvasiyon ko baap viceless banaye rahe.
The children have in their intellect. The father is making us Bharatvasis, that is the residents of India, viceless now.
पहले अपने को देखना है हम निर्विकारी बने हैं.
First we have to check ourselves. Have we become viceless?
भारत को तो बनाए रहे हैं, दुनिया को तो बाप निर्विकारी बनाए रहे हैं.
Bharat is certainly being made viceless. The father is certainly making the world viceless.
ये तो दूसरों को सुनाना है, लेकिन सुनाने से पहले क्या करना है?
This we have to tell the others. But before we tell the others, what should we do?
पहले अपने को देखना हम निर्विकारी बने हैं.
First, we have to look at ourselves. Have we become viceless?
क्योंकि खुद बने होंगे या बनने के सच्चे पुरुषार्थी होंगे तो दूसरों के ऊपर भी कहने का असर पड़ेगा. नहीं तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है.
It is because if we ourselves have become viceless or if we are the true purusharthi to become viceless, our speech will have an effect on others too. Otherwise, there will be no effect. Purusharthi, meaning those who make spiritual effort.
Ishwar ko main thagta to nahi hu.
You must check yourself. Do I cheat God?
Aise bhi hote hain. Muh bakka bahut hote hain.
There are also such people who speak a lot.
Hai na? Garajte bahut hain aur barste kam hain.
meaning they thunder a lot but rain little.
बोलेंगे बहुत, दूसरों को बहुत ज्ञान सुनाएंगे.
They will speak a lot. They will narrate a lot of knowledge to others.
परमात्मा स्वर्ग बनाने आया है, नरक का विनाश करने आया हुआ है, अब ये नरक की दुनिया खलास होने वाली है.
The supreme soul has come to create heaven. He has come to destroy hell. Now this world of hell is about to finish.
लेकिन खुद नरक बनाने से बाद नहीं आए.
But they can't stop themselves from creating hell.
नरक माने वैश्याले.
Hell means वैश्याले, that is brothel.
जहाँ वैश्याएं बनाई जाती हैं.
Where women are made into prostitutes.
जहाँ लंपट बनते हों.
Where men become licentious, that is lumpat.
स्त्रियों के पिछाड़ी पिछाड़ी फिरने वाले, उनको कहा जाता लंपट.
Those who run after women are called lumpat.
तो वैश्या और लंपटों की दुनिया ही नरक कही जाती है.
So the world of prostitutes and licentious men itself is called hell.
कीड़े मकोड़ों की दुनिया.
The world of worms and insects.
तो अपन को देखना है, मैं ईश्वर को ठगता तो नहीं हूँ.
So you have to check yourself. Do I cheat God?
ऐसे तो नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है, क्या हम क्या करते हैं.
Do I think God doesn't see me what I do?
तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल नहीं सकते.
These words can't come out of your mouth.
तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है.
You know the one who purifies is only the purifier of the sinful, the father.
एक के सिवाय और कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है.
There is no one else except the one who can make the impure pure.
ये उसी का धंधा है.
This is definitely his business.
और किसी का ये धंधा हो नहीं सकता.
It can't be anyone else's business.
क्यों?
Why?
मनुष्य गुरुओं का ये धंधा क्यों नहीं हो सकता?
Why can't this be the business of the human gurus?
खुद बने होंगे. अच्छा, जितने बने होंगे उतना बना देंगे.
Someone must have said something. They themselves must have become pure. अच्छा, they will make you pure to the extent they themselves would have become that.
आप समान तो बना देंगे.
They will at least make you equal to themselves.
है? चलो, परमात्मा एवर प्योर है.
All right. The supreme soul is ever pure.
वो एवर प्योर है, एवर पावन है. लेकिन गुरु लोग नंबर वार पावन तो हैं.
He is ever pure, but the gurus are pure at least number वार. That is at different levels. Aren't they?
तो नंबर वार की लिस्ट तक तो पहुँचा देंगे.
So they will at least make you reach the number वार list.
कि वो भी नहीं पहुँचाएंगे.
Or won't they make you reach even there?
तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नरक को स्वर्ग बनाई नहीं सकता, पतितों को पावन बनाई नहीं सकता.
So, except for the supreme father, supreme soul, no one can make hell into heaven. No one can make the impure pure.
क्यों नहीं बना सकता?
Why can't they?
क्योंकि ever pure ही प्योर दुनिया बना सकता है.
It is because only the one who is ever pure can create the pure world.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, राम, कृष्ण, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि की, वो सबको संघ का रंग लगता है.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, राम, कृष्ण, ऑल द ह्यूमन सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर कलर्ड बाय द कंपनी.
एक परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ही ऐसा है जिसको संघ का रंग नहीं लगता.
ओनली द वन सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव द पॉइंट ऑफ लाइट इज सच दैट ही इजंट कलर्ड बाय द कंपनी.
तो वो जिस मुकर्रर रथ में आता है उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता है.
सो ही टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परमानेंट चैरियट इन विच ही कम्स.
मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ.
ही सेज आई एम रिस्पॉन्सिबल.
तुम सिर्फ डायरेक्शन पर चलो.
यू जस्ट फॉलो द डायरेक्शंस.
तो जिस रथ की जिम्मेवारी लेता है उस रथ का तो कल्याण हुआ ही पड़ा है.
द चैरियट हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ही टेक्स The benefit of that chariot is as good as done.
उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है.
There is no need for us to worry about him at all.
क्यों?
Why?
क्योंकि ever pure परमात्मा शिव ने जिसको स्वीकार किया, जिसको अपनाया, उसका तो कल्याण होना ही होना है.
It is because the one the ever pure Supreme Soul Shiva has accepted, the one he has adopted, will certainly be benefited.
कोई साधारण मनुष्य आत्माएं किसी के ऊपर हाथ रख देती हैं रक्षा का, तो वो भी अपने विरुद्ध का पालन करती है.
If ordinary human souls place their hands on somebody for protection, they fulfill their promise.
तो सुप्रीम सोल तो फिर सर्वशक्तिवान है.
And the supreme soul is almighty.
उसकी छत्र छाया में पलने वाली आत्माएं उनका बाल बांका नहीं हो सकता.
The souls who are sustained under the canopy of his protection won't be harmed even a little.
लेकिन समर्पण होने की बात है.
But it is a question of being surrendered.
जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा.
The more devoted you are, the more powerful your mirror of knowledge will be.
माने ज्ञानी तू आत्मा बनेगा.
It means you will become a knowledgeable soul.
और जितना ही ज्ञानी तू आत्मा बनेगा उतनी ही पावरफुल आत्मा बनेगा.
And the more knowledgeable soul you become, the more powerful soul you will become.
क्योंकि ज्ञान का बल भी एक बल है.
Because the power of knowledge is also power.
शिव की ज्योति कोई स्थूल ज्योति नहीं है.
Shiva's light is not a physical light.
वो भी ज्ञान की ज्योति है.
That is the light of knowledge.
तो एक ही बाप है पतितों को पावन बनाने वाला.
So there is only one father who makes the impure pure.
भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था, ये संपूर्ण निर्विकारी है.
When Bharat was wiseless, it was heaven. These ones, that is Lakshmi Narayan, are completely wiseless.
यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी.
As the king and queen are, so will be the subjects.
तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है.
Only then is the whole Bharat called heaven.
अभी नरक है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है.
Now it is hell. This ladder of the 84 births is very good.
कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं.
If you find someone good, you may also give it as a present to him.
बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है.
Big people receive big presents.
तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा करके ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो.
So, if someone comes to you, then after making them understand the knowledge, you too may give them such presents.
चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है.
Things are always ready to be given.
तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए.
You too should have the knowledge ready to give as well.
सीढ़ी में पूरा ज्ञान है.
There is a complete knowledge in the ladder.
हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए.
You should remember how we had 84 births.
तो ये समझ की बात है ना?
So, this is something to understand, isn't it?
तो जिसको याद रहेगा हमने कैसे 84 जन्म लिए, तो ये भी याद रहेगा कि हम कैसे पतित बने और कैसे पावन बने.
Those who remember how they had 84 births will also remember how they became impure and how they became pure.
एक के संग के रंग में प्रैक्टिकल आने से पावन बने.
They became pure by coming in the color of the company of the one in practice.
और अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने.
And by coming in the color of the company of many, they became impure.
ये संग का रंग कोई बुद्धि का ही नहीं रहा.
This color of the company wasn't limited just to the intellect.
मन वचन कर्म संबंध के आधार पर संग का रंग चढ़ता है.
But the color of the company is applied to the soul based on the mind, speech, actions and relationships.
तो द्वापर युग से पतन क्यों हुआ?
So, why did the fall start from the copper age?
क्योंकि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट अनेक अनेक प्रकार के द्वैत द्वैतवादी दूसरा दूसरा मंत्र मत धर्म फैलाने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में हम भारतवासी आने लगे.
इट इज बिकॉज वी भारतवासी स्टार्टेड कमिंग इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद अब्राहम बुद्ध एंड क्राइस्ट. मेनी काइंड ऑफ ड्यूअलिस्ट हु स्प्रेड वेरियस ओपिनियंस एंड रिलीजियंस.
तो भारत का पतन हो गया.
सो भारत डिग्रेडेड.
तो जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए.
सो डेफिनेटली द वंस हु केम फर्स्ट हैड 84 बर्थ्स.
पहले आए
दोज हु केम फर्स्ट
माने सतयुग में.
डज इट मीन इन द गोल्डन एज.
सतयुग में भी तो कोई पहले जन्म में आए होंगे, कोई दूसरे तीसरे जन्म में.
इन द गोल्डन एज टू सम मस्ट हैव कम इन द फर्स्ट बर्थ एंड सम इन द सेकेंड एंड थर्ड बर्थ.
तो जो सतयुग में भी सबसे फर्स्ट जन्म में आए, पूरे जिन्होंने 84 जन्म लिए वो ही पक्के देवता है।
इन द गोल्डन एज टू दोज हु केम इन द वेरी फर्स्ट बर्थ, द वंस हु हैड द फुल 84 बर्थ्स, ओनली दे आर द फर्म डीटीज।
और बाकी 82, 83, 81 बर्थ लेने वाले पक्के देवता धर्म के नहीं है।
एंड द रिमेनिंग वंस हु हैव 82, 83, 81 बर्थ्स डोंट बिलोंग टू द डीटी रिलीजियन फर्मली।
जरूर वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है।
दे आर डेफिनेटली द सोल्स हु कन्वर्ट।
तो बाप 84 जन्म बता करके फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
सो द फादर मेंशंस द 84 बर्थ्स एंड देन सेज, आई एंटर दिस वंस ऑर्डिनरी बॉडी एट द एंड ऑफ हिज मेनी बर्थ्स।
क्या कहा?
व्हाट वाज सेड?
84 जन्म बताए कर फिर कहते हैं।
आफ्टर मेंशनिंग द 84 बर्थ्स ही सेज,
पहले बताते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म है।
फर्स्ट ही सेज यू हैव 84 बर्थ्स,
और बताने के बाद फिर कहते हैं।
एंड आफ्टर सेइंग इट ही सेज,
इनके बहुत जन्मों के अंत में।
एट द एंड ऑफ दीस वंस मेनी बर्थ्स,
किनके बहुत जन्मों के अंत में।
एट द एंड ऑफ हूज मेनी बर्थ्स,
इनके, तुम्हारे नहीं, इनके।
इनके नॉट तुम्हारे, दैट इज योर्स, इनके।
इनके किसकी तरफ इशारा?
हु इज ही हिंटिंग एट बाय सेइंग इनके?
बाजू वाली सोल।
ही इज रिफरिंग टू द सोल हु इज नेक्स्ट टू हिम।
कौन सी बाजू वाली सोल?
विच सोल इज नेक्स्ट टू हिम?
दादा लेखराज, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल।
दादा लेखराज, द सोल ऑफ ब्रह्मा, द सोल ऑफ कृष्णा।
इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
एट द एंड ऑफ दिस वंस मेनी बर्थ्स आई एंटर एन ऑर्डिनरी बॉडी।
इस दुनिया में साधारण तन किसे कहा जाए?
इन दिस वर्ल्ड हु विल बी कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बॉडी।
और असाधारण तन किसे कहा जाए?
एंड हु विल बी कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी।
पहले पेज का मध्यांत,
एंड ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज।
तो बहुत जन्मों के साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
सो आई एंटर द ऑर्डिनरी बॉडी ऑफ मेनी बर्थ्स।
तो उस हिसाब से ब्रह्मा के तन को साधारण तन नहीं कहा जा सकता।
अकॉर्डिंग टू दिस द बॉडी ऑफ ब्रह्मा कांट बी कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बॉडी,
क्योंकि ब्रह्मा का तन अच्छा खासा।
बिकॉज द बॉडी ऑफ ब्रह्मा वॉज फिट एंड फाइन,
गोरा चिट्ठा राजाओं के मुआफिक व्यक्तित्व वाला तन था।
इट हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड अ रॉयल पर्सनैलिटी,
उनका आकर्षण ही विशेष था शिव बाबा के प्रवेश करने से पहले ही।
ही हैड अ स्पेशल अट्रैक्शन इवन बिफोर शिव बाबा एंटर्ड हिम।
तो उसको साधारण तन नहीं कह सकते।
सो इट कांट बी कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बॉडी,
आर्थिक रीति से भी साधारण नहीं और शारीरिक रीति से भी साधारण तन नहीं कहा जा सकता।
इट कांट बी कॉल्ड ऑर्डिनरी विथ रेस्पेक्ट टू हिज फाइनेंशियल स्टेटस एंड फिजिकली ईदर। इट कांट बी कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बॉडी।
इसलिए यहाँ बोला कि 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं।
दिस इज व्हाई हियर इट वाज सेड आफ्टर मेंशनिंग द 84 बर्थ्स ही सेज,
यानी पहले 84 जन्म बताते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा।
दैट मीन्स टू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा फर्स्ट ही मेंशंस द 84 बर्थ्स,
फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
देन ही सेज एट द एंड ऑफ दिस वंस मेनी बर्थ्स आई एंटर एन ऑर्डिनरी बॉडी,
अर्थात ब्रह्मा का भी जब 84 जन्म का अंत होता है 69 में, तो 69 में वो आत्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण करती है।
इट मीन्स व्हेन द 84th बर्थ ऑफ ब्रह्मा एंड्स इन 69 दैट सोल टेक्स ऑन अ सर्टल बॉडी,
और सूक्ष्म शरीर भी जब पूरा होता है।
एंड व्हेन द सर्टल बॉडी ऑल्सो कम्प्लीट्स इट्स एज,
तब वो आत्मा जिस ब्राह्मण बच्चे का आधार लेती है।
देन द ब्राह्मिन चाइल्ड हु सपोर्ट दैट ब्रह्मा सोल टेक्स,
वो बच्चा ही ब्रह्मा कहा जाता है।
दैट चाइल्ड इन सेल्फ इज कॉल्ड ब्रह्मा,
क्योंकि ब्रह्मा तन में ही परमात्मा शिव को प्रवेश करना है।
इट इज बिकॉज द सुप्रीम सोल शिव हैज टू एंटर ओनली द बॉडी ऑफ ब्रह्मा,
क्योंकि ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश होती है।
इट इज बिकॉज द सोल ऑफ ब्रह्मा एंटर्स हिम,
जिसकी यादगार शंकर के मस्तक पर आज भी चंद्रमा अधूरा दिखाया जाता है।
In its memorial, a crescent moon is shown on the head of Shankar even today.
इसलिए बोला कि 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारणतन में प्रवेश करता हूँ.
That is why it was said, after mentioning your 84 births, the father says, I enter the ordinary body of this one at the end of his many births.
फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा.
Then I name him Brahma.
क्या?
What?
पहले भी नाम रखा क्या?
What did he name him before as well?
ब्रह्मा.
ब्रह्मा.
लेकिन वो हो गया साकार ब्रह्मा, साकारी स्टेज वाला.
But that was a corporeal Brahma, the one with a corporeal stage.
क्योंकि ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो.
Because you won't find even a single photo of Brahma that would have an incorporeal stage like the religious fathers.
Mahatma Buddha ka photo dekho.
See the photo, meaning pictures of Mahatma Buddha.
Christ ka photo dekho, Guru Nanak ka photo dekho.
See the photo of Christ, the photo of Guru Nanak.
Usme nirakari atmik stage jhalak rahi hai, aankhon se hi.
The incorporeal stage, the soul conscious stage is visible in it just through their eyes.
लेकिन ब्रह्मा की फोटो में निराकारी स्टेज नहीं दिखाई गई.
But the incorporeal stage isn't shown in the photo of Brahma.
क्योंकि माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी.
It is because a mother is corporeal and a father is incorporeal.
ऐसा पहले भी बाबा ने मुरली में बोला हुआ है.
Baba has said this in the Murli earlier too.
तो फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा.
So then I name him Brahma.
इसलिए एक वाणी में कहा है ये ब्रह्मा चला जावे तो क्या स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी.
This is why it has been said in a vani, if this Brahma goes away, won't heaven be established?
होगी.
It will.
भले ये ब्रह्मा चला जावे.
Although this Brahma goes away,
तो जो भी जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े.
Whichever body I enter will have to be named Brahma.
ऐसे बोला.
This was said.
तो इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ.
So I name him Brahma and I create Brahmins through this one.
इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, किन द्वारा?
I create Brahmins through this one. Through whom?
दादा लेखराज के तन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, यानी ब्राह्मण धर्म की स्थापना उस ब्रह्मा के द्वारा हुई.
Through the body of Dada Lekh Raj Brahma, I create Brahmins. Meaning, there was the establishment of the Brahmin religion through that Brahma.
क्योंकि ब्राह्मण भी साकार होंगे या निराकार या आकारी?
Because, will the Brahmins be corporeal, incorporeal or subtle?
साकार होंगे.
They will be corporeal.
तो साकार की रचना भी साकार के द्वारा होगी?
So, the corporeal ones will also be created through someone corporeal.
ब्राह्मण धर्म रचता हूँ दादा लेखराज के द्वारा.
I create the Brahmin religion through Dada Lekhraj.
ये नहीं कहा कि देवता रचता हूँ.
He didn't say I create the deities.
और कैसे भी तो practical में तो होना चाहिए थे.
And had he said it, it should have happened in practice.
69 के बाद कोई कह सकता है कि मैं देवता बन गया हूँ?
Can anyone say after 69, I have become a deity?
या देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो गई है?
Or that the ancient deity religion has been established?
क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाए तो दूसरे धर्मों का विनाश होना चाहिए.
It is because if the ancient deity religion is established, the other religions should be destroyed.
जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो सब धर्म खलास हो जाएंगे.
When your complete capital is established, all the other religions will be destroyed.
तो ब्राह्मण रचता हूँ ब्रह्मा द्वारा.
So, I create Brahmins through Brahma.
नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं?
Otherwise, where will I get the Brahmins from?
तो ये हुई फर्स्ट मशीनरी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचने की.
So, this is the first machinery to create Brahmins through Brahma.
और सेकेंड मशीनरी क्या है?
And what is the second machinery?
नहीं.
Someone must have said something. No.
ब्राह्मणों को फिर बैठ शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ.
Then I sit and teach the Brahmins and make them from Brahmins into deities.
तो देवता बनाने का कार्य देवता के थ्रू ही होगा.
So the task of making someone into deities will be done through a deity alone.
जैसे लायर की पढ़ाई लायर ही पढ़ाएगा.
Just like a lawyer himself will teach the studies of law.
डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर ही पढ़ाएगा.
A doctor himself will teach the studies of medicine.
ऐसे ही देवता बनाने की पढ़ाई देवता के थ्रू ही पढ़ाई जाएगी.
Similarly, the study of becoming a deity will be taught through a deity himself.
तो वही ब्रह्मा जो साकार स्तनधारी था अपना शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा देवता बनता है.
So the same Brahma who was a corporeal bodily being, when he leaves his body, he becomes Brahma, the subtle world dweller, a deity.
Brahma, so Vishnu.
It is said Brahma, so Vishnu.
Vishnu तो बाद में बनेगा.
He will become Vishnu later on.
लेकिन विष्णु बनने से पहले एक बीच की स्टेज और है.
But before becoming Vishnu, there is another stage in between.
जिसको कहते हैं शंकर.
Which is called Shankar.
शंकर अर्थात मिक्स.
शंकर means mixed.
सतोप्रधान शिव.
सतोप्रधान शिव meaning consisting in the quality of goodness and purity.
सत्य ही सत्य.
He is just truth.
रजोप्रधान ब्रह्मा और तमोप्रधान वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में छोड़ करके गई थी राम वाली आत्मा.
रजोप्रधान ब्रह्मा एंड द सोल हु लेफ्ट द यज्ञ इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ. द सोल ऑफ राम इज तमोप्रधान. रजोप्रधान मीनिंग डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी एंड पैशन. तमोप्रधान मीनिंग डोमिनेटेड बाय डार्कनेस और इग्नोरेंस.
तो सत्य रज तम तीनों गुणों का मेल ये हो गया शंकर.
सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री क्वालिटीज सत रज एंड तम इज शंकर.
जैसे कहते हैं वर्ण शंकर.
जस्ट लाइक इट इज सेड वर्ण शंकर मीनिंग A person of mixed caste or race.
तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं?
So where will I bring Brahmins from?
ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या?
Have you ever heard of Brahma's father?
कोई ब्रह्मा का भी बाप होता है क्या?
Is there any father of Brahma too?
किसे कहेंगे ब्रह्मा का बाप?
Who will you call the father of Brahma?
जरूर कहेंगे भगवान.
Definitely it will be said to be God.
ब्रह्मा का बाप कौन?
Who is the father of Brahma?
भगवान.
God.
ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में.
ब्रह्मा एंड विष्णु आर शोन इन द सटल वर्ल्ड.
शंकर को क्यों छोड़ दिया?
Why did he leave Shankar?
शंकर को नहीं दिखाते हैं सूक्ष्म बतन
में. Isn't Shankar shown in the सटल वर्ल्ड?
सूक्ष्म बतन में तो दिखाते हैं.
He is definitely shown in the सटल वर्ल्ड.
लेकिन सूक्ष्म बतन में भी सबसे ऊंचे तबके में.
But even in the certain world, they show him in the highest level.
ब्रह्मापुरी से भी ऊपर विष्णुपुरी और विष्णुपुरी से भी ऊपर परम धाम की ओर शंकरपुरी दिखाई जाती.
The abode of Vishnu is higher than even the abode of Brahma, and higher than even the abode of Vishnu towards the supreme abode, the abode of Shankar is shown.
यह है ऊंचे ऊंची स्टेज.
This is the highest on high stage.
मनुष्य तन रूप धारी.
He is the one who has the body, the form of a human being.
देवताओं में जो ऊंची से ऊंची स्टेज है उसको कहा जाता है देव देव महादेव.
The highest on high stage amongst the deities is called Dev Dev Mahadev, meaning deity of the deities, the greatest deity.
तो देवताओं में भी सबसे बड़ा.
So he is the greatest amongst all the deities.
इसलिए वाणियों में मुरलियों में बोला हुआ है नेक्स्ट टू शिव है शंकर.
दैट इज वाई इट इज सेड इन द वाणी द मुरली नेक्स्ट टू शिव इज शंकर.
नेक्स्ट टू शिव है प्रजापिता.
नेक्स्ट टू शिव इज प्रजापिता.
नेक्स्ट टू शिव है कृष्ण.
एंड नेक्स्ट टू शिव इज कृष्णा.
तो शिव ज्योति बिंदु के बाद जो गॉड का रूप है वो परमात्मा शिव का ये स्वरूप है.
सो द फॉर्म ऑफ गॉड आफ्टर शिव The point of light is this form of the supreme soul Shiv.
चाहे उसको संगम में भी कृष्ण कहा जाए चाहे शंकर कहा जाए और चाहे प्रजापिता कहा जाए.
Whether he is called the confluence is Krishna, Shankar or Prajapita, it is one and the same.
तो ब्रह्मा विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में.
So Brahma and Vishnu are shown in the subtle world.
तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ?
So, who is the father of Brahma?
Eh? Brahma. Brahma ne badi. O mama ne? Ma?
Brahma. Brahm means senior and ma means mother.
तो बड़ी माँ को रचने वाला कोई बड़ा बाप भी होगा कि ऐसे ही बड़ी माँ बन गई?
So will there be a senior father who creates the senior mother, or did she become the senior mother on her own?
तो बड़ी माँ शब्द ही जाहिर करता है कि कोई बड़ा बाप भी है जिसने उस माँ को रचा.
The word senior mother itself specifies that there is also a senior father who created that mother.
क्योंकि बच्चे तो बाद में रचे जाते हैं.
Because the children are created later.
पहले तो माँ रची जाती है.
First, the mother is created.
तो ब्रह्मा हुई बन्नी.
So, Brahma is the bunny, meaning wife.
और उसको रचने वाला हुआ प्रजापिता ब्रह्मा.
And the one who creates her is प्रजापिता ब्रह्मा.
यज्ञ के आदि में.
In the beginning of the यज्ञ.
क्योंकि बन्नी बन ही तब सकती है जब बन्ना साकार में हो.
It is because the banni can be created only when the banna, meaning husband, is in the corporeal form.
Shiv Jyoti Bindu ko banna nahin keh sakte.
Shiv, the point of light, can't be called banna.
Wo kisi ka pati nahin ban sakta jab tak sharir dharan na kare.
He can't become someone's husband until he takes on a body.
Kyunki bindu bindu atma hai sab aapas mein bhai bhai.
Because all the point souls are brothers for each other.
और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव सिर्फ बाप है.
And Shiv, the father of the point souls, is only the father.
उसको दूसरा संबंध नहीं कह सकते.
You can't call him with any other relationship.
दूसरे संबंध शिव ज्योति बिंदु बाप के बच्चों के साथ कब बनते हैं?
When are the other relationships of Shiv, the point of light father, formed with the children?
जब साकार में शरीर में प्रवेश करे.
When he enters a body in the corporeal form.
तो साकार प्रजापिता में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को भी अपनी बन्नी बनाया.
So the supreme soul Shiv entered the corporeal prajapita and made Brahma also his banni.
तो ब्रह्मा बच्चा भी है.
So Brahma is also a child.
मुरली में बोला.
It has been said in the Murli.
Brahma bachcha bhi hai, to ye meri banni bhi hai.
Brahma is my child and he is also my banni.
To Brahma ka baap kabhi suna hai kya?
So have you ever heard of Brahma's father?
Zarur Bhagwan hi kahenge.
Definitely it will be God himself.
Brahma aur Vishnu ko dikhate hain sukshm batan mein.
Brahma and Vishnu are shown in the subtle world.
Baap to kehte hain main inke 84 janmon ke ant mein pravesh karta hu.
The father says, I entered this one at the end of his 84 births.
Adopt kiya jata hai. To naam badli kiya jata hai.
When someone is adopted, his name is changed.
Ab adoption saakar mein hogi ya nirakar mein?
Well, will there be adoption in the corporeal or in the incorporeal?
Adoption to saakar mein hogi.
There will definitely be adoption in the corporeal.
Kyun?
Why?
क्योंकि एडॉप्ट किया जाता है रचना को. एडॉप्ट करने वाला होता है रचयिता.
इट इज बिकॉज द वन हु इज अडॉप्टेड इज द क्रिएशन एंड द वन हु अडॉप्ट्स इज द क्रिएटर.
आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु.
द फादर ऑफ द सोल्स इज शिव द पॉइंट ऑफ लाइट.
तो आत्माएं भी अनादि.
सो द सोल्स आर इटर्नल.
और परमात्मा शिव ज्योति बिंदु भी अनादि.
एंड द सुप्रीम सोल शिव The point of light is also eternal.
इसमें रचने की बात ही नहीं.
There is no question of creating in this.
जो चीज रची जाती है उसको अनादि नहीं कहा जा सकता.
Anything that is created can't be called eternal.
तो रचयिता बाप शिव और आत्माएं ये अनादि हैं.
So the creator father Shiv and the souls are eternal.
इनका रचयिता और रचना का संबंध नहीं हो सकता.
They can't have a relationship of creator and creation.
क्योंकि जो चीज रची जाती है वो कोई नई चीज हुई जो पहले नहीं थी.
It is because something that is created is new. It is something that didn't exist before.
तो जब adopt किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है.
So when someone is adopted, his name is changed.
भारतीय परंपरा में भी ऐसे है.
It is like this in the Indian tradition too.
Sanyasi jab kisi shishy ko apna banate hain, to uska naam badal dete hain.
When the sannyasis make someone their disciple, they change their name.
Kanya jab shaadi hokar ke apne ghar mein jaati hai, to uska pihar ka naam badal diya jata hai.
When a maiden is married and when she goes to her home, her maiden name is changed.
To Shiv Baba bhi jab Brahma ko apni banni banate hain, to Brahma ka naam badal jata hai.
So when Shiv Baba makes Brahma his banni, then Brahma's name is changed.
Pehle naam tha Dada Lekhraj.
First his name was Dada Lekhraj.
Phir naam badal ke kya ho gaya? Brahma.
Then the name changed to what? Brahma.
Kisne badla?
Who changed it?
Badalne wala kaun?
Who is the one who changed it?
Shiv.
Is it Shiv?
Shiv kya bindu upar se aawaz aayi kya?
Did the voice come from Shiv, the point above?
Zarur kisi ne to bataya.
Definitely someone must have told Dada Lekhraj.
Ki tumhare sakshatkaron ka ye arth hai.
This is the meaning of your visions.
Varna Brahma to khud hi mujhe hue the.
Otherwise, Brahma himself was confused at that time.
To jisne bataya, wohi rehta hua.
So the one who told him the meaning of his visions is himself the creator.
To naam badli kiya jata hai.
So the name is changed.
Dada Lekhraj ka naam badal karke kya hua?
To what did the name Dada Lekhraj change?
Brahma.
Brahma.
Sanyas bhi karaya jata hai.
People are made to do sannyas, that is practice of renunciation.
Sanyasi bhi jab sannyas karte hain to fauran bhool nahi jate hain apne pichle naam roop ko, desh kaal ko.
Even when the sannyasis renounce the worldly life, they don't forget their previous name and form, place and time immediately.
Jab tak jeete hain to yaad zarur rehta hai.
They certainly remember it as long as they live.
Tumko bhi yaad rahegi.
You will also remember them.
Parantu tumko unke liye vairagya.
But you have disinterest for them.
Kiske liye?
For what?
Apne purv janm ke naam roop ke liye vairagya.
You have disinterest for your previous birth's name and form.
Purv janm ka naam aur roop, desh, kaal, sambandhi sab se vairagya.
You have disinterest for the name, form, country, time, relatives and everything of the previous birth.
Kyunki tum jante ho ye sab qabr dakhil hone wale.
Because you know that all of them are going to be buried in the grave.
Sab mitti mein mil jayenge.
Everyone will end up in soil.
Isliye hum unko yaad kyun kare?
This is why should we remember them?
Ye duniya ke jo laukik sambandh hai sab dhul mein milne wale.
All the laukik, that is worldly relationships of this world, are going to mix with the soil.
Koi sambandhi kaam nahi aavega ant samay mein.
No relative will be of any use at the end.
Deh aur deh ke sambandhi kisi ke kaam aane wale nahi, ye sab sambandh jhoothe ho jayenge.
The body and bodily relatives will be of no use to anyone. All these relations will be proved to be false.
Kis jab mahavinash ka महाप्रकोप होगा दुनिया में तो सबको अपनी अपनी पड़ेगी.
इट इज बिकॉज वेन देर विल बी द ग्रेट फ्यूरी ऑफ द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन दिस वर्ल्ड देन एवरीवन विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ.
कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा.
देर विल बी नो वन टू लुक एट समवन एल्स.
एक परमात्मा बाप ही सबका रक्षक होगा.
ओनली द वन सुप्रीम सोल फादर विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीवन.
तो ये सब कब्र दाखिल होने वाले.
सो ऑल दीज are going to be buried in the grave.
इसलिए हम उनको याद क्यों करें जो कब्र दाखिल होने वाले हैं.
This is why should we remember those who are going to be buried in the grave.
ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति.
We have to understand everything properly through the knowledge.
वो भी ज्ञान से घर बार छोड़ते हैं साधु सन्यासी.
The sages and sannyasis also leave their household because of knowledge.
क्या?
What?
उनको वैराग्य कब आता है?
When do even they have disinterest?
है? कुछ न कुछ ज्ञान होता है नश्वरता का.
They have the knowledge of nashwarta, that is the perishable nature, to some extent.
ये प्रपंच कुछ भी नहीं.
These worldly affairs and entanglements are nothing.
तो छोड़ देते हैं?
सो दे लीव इट।
तो यहाँ भी जब ज्ञान बुद्धि में उपजता है तो वैराग आता है सच्चा।
हियर टू व्हेन द नॉलेज इमर्जेस इन द इंटेलेक्ट यू हैव द ट्रू डिसइंटरेस्ट।
इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बिन वैराग विराग न, बिन वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई।
दैट इज व्हाई इट इज सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति, बिनु वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मीनिंग देयर कैनॉट बी एनलाइटमेंट विदाउट डिसइंटरेस्ट। इट इज नॉट इजी टू अटेंड डिसइंटरेस्ट विदाउट गॉड्स ग्रेस।
जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं पैदा हो सकता।
नॉलेज कांट इमर्ज इन समवन अनलेस ही डेवलप्स डिसइंटरेस्ट।
तो सच्चा वैराग्य चाहिए।
सो ट्रू डिसइंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड।
त्याग चाहिए।
सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड।
तो ज्ञान पैदा होता है।
देन द नॉलेज इमर्जेस।
परमात्मा की पहचान होती है।
एंड यू गेन द रिकग्निशन ऑफ सुप्रीम सोल।
नहीं तो नहीं हो सकती।
अदरवाइज यू कांट गेन हिज रिकग्निशन।
तो उन सन्यासियों से पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा, तो वो बताती नहीं है।
इफ यू आस्क दो सन्यासीज हाउ दे लेफ्ट देयर हाउस होल्ड दे नेवर से दैट टू एनीवन।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी उन सन्यासियों से पूछा जाए तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तो पूरी सच्ची बात नहीं बताएंगे कि हमने कैसे छोड़ा।
इवन इन द ब्राह्मण वर्ल्ड इफ यू आस्क द सन्यासीज हाउ दे लेफ्ट देयर हाउस होल्ड दे वोंट टेल यू द कम्प्लीट ट्रूथ हाउ दे लेफ्ट इट।
तो फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग आया है।
देन दे आर आस्क्ड टैक्टफुली हाउ डिड यू डेवलप डिसइंटरेस्ट।
हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें।
प्लीज टेल अस सो दैट वी कैन ऑल्सो डू लाइक वाइज।
तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो।
यू गिव द टेम्पटेशन टू बिकम प्योर टू अदर्स।
बाकी तुमको सब याद है।
एज फॉर द रेस्ट यू रिमेम्बर एवरीथिंग।
छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो।
यू कैन से एवरीथिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ योर चाइल्डहुड।
बुद्धि में सारा ज्ञान है।
यू हैव द कम्प्लीट नॉलेज इन योर इंटेलेक्ट।
कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं।
हाउ ऑल दिस आर द एक्टर्स ऑफ द ड्रामा हु हैव बीन प्लेइंग पार्ट्स।
अभी कलयुग की कर्म बंधन टूटने का है सबका।
Now the Iron Age karmic bondages of everyone are going to break.
जो भी कलयुग के कर्म बंधन हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ कर्मों के बंधन हैं, वो सब टूट जाने वाले हैं।
All the karmic bondages of the Iron Age that we have with various souls are going to break.
फिर जाएंगे हम शांति धाम।
And then we will go to the abode of peace.
जब तक 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है तब तक कोई आत्मा शांति धाम में नहीं जा सकती।
Until the karmic accounts of the 63 births are cleared, no soul can go to the abode of peace.
तो शांति धाम जाना कोई शरीर छोड़ करके जाने की बात नहीं है।
To go to the abode of peace doesn't mean that you have to leave the body and go there.
शांति स्टेज में स्थिर होने की बात है।
इट इज अबाउट स्टेबलाइजिंग इन अ पीसफुल स्टेज।
कि कोई भी आत्मा शांति स्टेज में स्थिर तब तक नहीं हो सकती जब तक देह और देह के संबंधों का बंधन बंधा हुआ है।
नो सोल कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ इन द पीसफुल स्टेज अंटिल देयर इज द बॉन्डेज ऑफ द बॉडी एंड बॉडीली रिलेशनशिप्स।
तो वहाँ शांति धाम से सबका नया संबंध जुटेगा वापस आने के बाद।
सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द अबोड ऑफ पीस एवरी वंस न्यू रिलेशनशिप विल बी फॉर्म्ड।
समझाने की पॉइंट भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं।
बाबा कीप्स गिविंग अस नाइस पॉइंट्स टू एक्सप्लेन टू अदर्स।
यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे।
व्हेन दीज वेरी भारतवासीज वेर द वंस हु बिलोंग टू द एंशियंट डीटी रिलीजियन दे वेर वॉइसलेस।
फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने।
देन दे बिकेम विशेष आफ्टर हैविंग 84 बर्थ्स।
पहले वॉइसलेस थे निर्विकारी थे।
अर्लियर दे वर वॉइसलेस दे वर निर्विकारी दैट इज वॉइसलेस।
किसका संग दिया?
हुज कंपनी डिड दे टेक?
संग तारे कुसंग बोरे।
संग तारे कुसंग बोरे दैट इज गुड कंपनी टेक्स यू अक्रॉस एंड बैड कंपनी ड्राउन्स यू।
तो किसका शामिल किया?
सो हुज कंपनी डिड दे टेक?
अरे
अरे
अरे वकील बनते हैं तो किसका संग करते हैं?
अरे व्हेन यू बिकम अ लॉयर हुज कंपनी डू यू टेक?
वकील का संग करते हैं।
यू टेक द कंपनी ऑफ अ लॉयर।
डॉक्टर बनते हैं तो किसका संग करते हैं? डॉक्टर का संग करते हैं।
व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर हुज कंपनी डू यू टेक? यू टेक द कंपनी ऑफ अ डॉक्टर।
तो राजा बनना है तो किसका संग करना पड़े?
सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ किंग हुज कंपनी शुड यू टेक?
जरूर जो राजाओं का राजा बनने वाला हो।
डेफिनेटली द वन हु इज गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द किंग्स।
जिसके ऊपर कोई राजा ही चला ही न सके।
द वन हु कांट बी रूल्ड बाई एनी वन।
यज्ञ के आदि में भी उसके ऊपर कोई राजा ही चला ही नहीं सकता।
इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ टू नो वन कुड रूल ओवर हिम।
इसलिए बाबा याद दिलाते मुरलियों।
दैट इज वाई बाबा रिमाइंड्स अस इन द मुरलीज।
ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे।
देर वेर सच चिल्ड्रन हु यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस टू इवन मम्मा एंड बाबा।
ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे।
दे यूज्ड टू मेक देम परफॉर्म द ड्रिल। दे यूज्ड टू सिट एज टीचर्स।
हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे।
वी यूज्ड टू फॉलो देयर डायरेक्शंस।
हम माने कौन?
वी मीन्स हु?
मम्मा बाबा भी उनके डायरेक्शन पर चलते थे।
मम्मा एंड बाबा ऑल्सो यूज टू फॉलो देयर डायरेक्शंस।
तो ऐसी पावरफुल आत्मा है जो मम्मा बाबा को भी अपने कंट्रोल में रखती थी।
सो सच पावरफुल सोल्स हु यूज टू कीप इवन मम्मा एंड बाबा अंडर देयर कंट्रोल।
क्या वो इन दीदी दादी और दादाओं के कंट्रोल में आ जाएंगी?
विल दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस दीदीज दादीज एंड दादाज?
अरे उनको तो छोड़ो।
अरे लीव देम असाइड।
उन आत्माओं का जो आदि का सारा ग्रुप है जो शरीर छोड़ करके गया था।
द होल ग्रुप ऑफ दो सोल्स एट द बिगनिंग हु लेफ्ट देयर बॉडी एंड वेंट अवे।
और फिर अब शरीर दोबारा लेकर के यज्ञ में आया हुआ है।
एंड नाउ अगेन दे हैव कम टू द यज्ञ विद अनदर बॉडी।
उस सारे ग्रुप में से कोई भी झुकने वाला नहीं हो सकता।
देयर कैन बी नो वन फ्रॉम दैट होल ग्रुप दैट बाउज।
क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं।
बिकॉज दे आर द किंग्स ऑफ मेनी बर्थ्स।
किसी देहधारी से प्राप्ति करने वाली आत्माएं नहीं है।
दे आरंट द सोल्स हु रिसीव अटेनमेंट्स फ्रॉम एनी बॉडीली बीइंग।
वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से प्राप्ति करने वाली आत्माएं हैं।
दे आर द सोल्स हु रिसीव अटेनमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल डायरेक्टली।
तो वो किसी देहधारी धर्मगुरु से कैसे झुकेंगे?
सो हाउ विल दे बव इन फ्रंट ऑफ एनी बॉडीली रिलीजियस गुरु?
इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है।
दैट इज वाई इट इज सेड इन द अव्यक्त वाणी।
किसी देहधारी के अधीन होने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता।
द वन हु बिकम सबॉर्डिनेट टू अ बॉडीली बीइंग कैन नेवर बिकम अ रूलर।
अधीन नहीं होना।
यू शुडंट बिकम सबॉर्डिनेट।
जब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, राजा ही दे रहा है।
When the Supreme Father, Supreme Soul Himself is teaching us after coming and is giving us the kingship,
अंजाम कर रहा है बच्चे मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा।
When He is making a promise, children, I will take you along with me,
तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाऊंगा।
I will establish your capital and then go,
तो कोई देहधारी मनुष्य गुरु कैसे राजधानी स्थापन कर सकते हैं?
Then how can any bodily human gurus establish the capital?
Ibrahim, Buddha, Christ aaye, wo bhi is purani duniya mein purane ho karke sharir chhod karke chale gaye.
Abraham, Buddha, Christ came. They too became old in this old world, left the body and went away.
Kahin wapas is duniya se bahar nahi chale gaye.
They didn't go back out of this world.
Isi duniya mein kahin na kahin patit avastha mein.
They are somewhere in this very world in an impure stage.
तो वो भी नीचे गिर गए।
They too fell.
तो जो 84 जन्म लेने वाली या ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली मनुष्य आत्मा है जो इस समय पति तमो प्रधान स्टेज में, वो कैसे ऐसी सर्विस कर सकती है मनुष्य से देवता बनाने की?
So the human souls who have 84 births or the ones who have a maximum of births who are in the impure tamo pradhan stage now, how can they do such service of making human beings into deities?
Narak ko swarg banane ki.
To make narak, that is hell, into swarg, that is heaven.
Ye manushya guru to aur hi narak banate hain is duniya ko, vaishyale banate hain.
these human gurus make this world into a hell even more. They make it into a vaishyalaya, that is brothel.
शिवालय नहीं बना सकते.
They cannot make a शिवालय, that is the house of Shiv.
तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं.
So, you have all the knowledge in your intellect, how all these souls are the actors of the drama who have been playing their parts.
अभी कलयुग विक्रम बंधन टूटने का है सबका.
Now, the Iron Age karmic bondages of everyone are about to break.
वहाँ फिर नई दुनिया में सर्व का नया संबंध जुटेगा. समझाने की पॉइंट बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं.
Then there in the new world, everyone's new relationship will be formed. Baba keeps giving us nice points to explain to others.
ये भारतवासी आज सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे.
When these Bharatvasis belonged to the ancient deity religion, they were wiseless.
फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने.
Then after 84 births, they became vicious.
अब फिर वाइसलेस बनना है.
Now, they have to become wiseless again.
परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए.
But the one who will enable them to make पुरुषार्थ is needed.
क्या बनने के लिए?
He is needed to make them what?
Wiseless बनाने के लिए.
He is needed to make them wiseless.
अभी तुमको बाप ने समझाया.
Now the father has explained to you.
दूसरा पेज.
Second page.
बाप कहते हैं तुम वही हो ना.
The father says, you are the same ones, aren't you?
बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही हैं ना.
The children also say, Baba, you are also the same, aren't you?
वही माना.
The same means what?
है? जरूर पहले से परिचय हुआ पड़ा है.
Definitely. They are introduced to each other before.
बच्चे कहते हैं आप भी वही हो ना. वही मैंने कौन थे कर देखा था कभी.
Children say, you are also the same, aren't you? The same means which one? Had they ever seen the father before?
है स्मृति आती है.
Do you get this awareness?
जरूर स्मृति आती है.
Definitely you get the awareness.
बुद्धि को स्मृति आती है कि हम वही हैं.
The intellect becomes aware. We are the same.
वही बाप के बच्चे हैं.
We are the children of the same father.
बाप कहते हैं कर्म पहले भी तुमको पढ़ा करके राज्य भाग दिया था.
The father says, I gave you the share of your kingship after teaching you a cycle ago as well.
कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे.
He will do the same, cycle after cycle.
ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे.
Whatever happened in the drama, the obstacles that were created will be created again.
यज्ञ के आरंभ में भी विघ्न पड़े थे.
Obstacles were created in the beginning of the yajna too.
इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला.
That is why it has been said in the अव्यक्तवाणी.
विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई.
When was the flame of destruction ignited?
स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई.
Along with the establishment, the flame of destruction was also ignited from the yajna kund, that is pit for sacrificial fire.
कौन निमित्त बने. ब्रह्मा फिर बाप फिर बीच में गुजरे ब्राह्मण बच्चे.
Who became instruments? ब्रह्मा, then the father, and the Brahmin children came in between.
उन्होंने विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने में और आहुति दे दी.
They added more ahuti, that is burnt offering, to ignite the flame of destruction.
पहले निमित्त कौन बना.
Who became the instrument first?
अरे कोई लड़ाई होती है तो पकड़ा किसको जाता है.
अरे when there is some fight, who is caught?
है भाई दो लड़ रहे हैं तो लड़ने वालों में दो में से किसी एक की तो गलती है.
Two people are fighting. Out of the two, one of them is certainly guilty.
पहली गलती एक की है फिर दूसरी गलती दूसरे की है.
फर्स्ट द मिस्टेक इज ऑफ वन पर्सन एंड देन द मिस्टेक इज ऑफ द सेकेंड पर्सन.
फिर और औरों की गलती
एंड देन इट इज द मिस्टेक ऑफ अदर्स.
तो स्पष्ट बता दिया निमित्त कौन बने.
सो इट हैज बीन सेड क्लियरली हु बिकेम द इंस्ट्रूमेंट्स.
ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे.
ब्रह्मा the father and the Brahmin children.
Sabhi to ho gaye lekin pehle kisne ki.
Everyone is included but who started the fight first.
ब्रह्मा ने पहल की,
ब्रह्मा स्टार्टेड इट।
यज्ञ के आदि में भी ये पहल हुई थी।
इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ दैट देयर वाज दिस स्टार्ट।
बच्चों के मोह में आकर के माँ और बाप के बीच में झगड़ा हुआ था।
बिकॉज ऑफ बींग अटैच टू द चिल्ड्रन देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द मदर एंड द फादर।
वो झगड़ा आगे चल करके और क्लियर होना है।
दैट फाइट हैज टू बिकम क्लियरर लेटर ऑन।
कोई ऐसे आसुरी बच्चे थे जिन्होंने माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलाने का काम किया।
देयर वर सच डेमोनिक चिल्ड्रन हु डिड द वर्क ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन बिटवीन द मदर एंड द फादर।
और जो आदि में हुआ सो अंत में भी प्रत्यक्ष होगा।
एंड वॉट एवर हैपन इन द बिगनिंग विल बी रिवील्ड इन द एंड एज वेल।
आदि में तो सिर्फ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी।
इन द बिगनिंग द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज जस्ट इग्नाइटेड।
और अब उसकी संपूर्ण आहुति होनी है।
एंड नाउ द फाइनल ऑफरिंग हैज टू बी पुट इन टू इट।
ये विनाश ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं है।
दिस फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज नो ऑर्डिनरी फ्लेम।
विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से उठी और सारे विश्व को चपेट में ले बैठी।
द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन अपीयर्ड फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्र एंड इट टुक द एंटायर वर्ल्ड इन इट्स क्लचेस। रुद्र मीनिंग अ नेम ऑफ शंकर।
ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है।
दिस इज नॉट अ माइनर वॉर।
सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी।
द होल वर्ल्ड हैज टू बी सैक्रिफाइज्ड इन इट।
तो ड्रामे में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े वो फिर भी पड़ेंगे।
सो वॉट एवर हैपेंड इन द ड्रामा द ऑब्स्टिकल्स दैट वर क्रिएटेड विल बी क्रिएटेड अगेन।
आदि में भी विघ्न पड़े और अब अंत में भी फिर विघ्न पड़ेंगे।
देयर वर ऑब्स्टिकल्स इन द बिगनिंग एंड नाउ इन द एंड टू ऑब्स्टिकल्स विल बी क्रिएटेड अगेन।
जीवन में क्या क्या होता है ये याद तो रहता है ना।
वॉट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ वी डू रिमेम्बर इट डोंट वी।
तो हमारा भी ये ब्राह्मण जीवन है।
सो आर्स इज द ब्राह्मण लाइफ।
कोई कोई आत्मा ब्राह्मण जीवन में भी दो दो तीन तीन जन्म लेती है।
सम सोल्स हैव टू और थ्री बर्थ्स इवन इन द ब्राह्मण लाइफ।
लेकिन हुआ तो ब्राह्मण जीवन ना।
बट इट इज स्टिल द ब्राह्मण लाइफ इजंट इट।
तो आगे पीछे की ब्राह्मण जीवन की बातें याद भी रहेंगी ना।
सो द सोल्स विल रिमेम्बर द पास्ट एंड प्रेजेंट इंसिडेंट्स ऑफ द ब्राह्मण लाइफ वोंट दे।
इनको तो सब याद है।
दीज वंस रिमेम्बर एवरीथिंग।
बतलाते भी हैं कि गांवड़े का छोरा था।
ही ऑल्सो सेज आई वॉज अ विलेज बॉय।
और बैकुंठ का मालिक बना।
एंड देन आई बिकेम द मास्टर ऑफ पैराडाइज।
कौन
हु
किनको याद है।
हु रिमेम्बर्स इट।
इनको तो याद है।
दीज वंस दैट इज इनको डू रिमेम्बर इट।
इनको माने किनको।
दीज वंस मीन्स हु।
ब्रह्मा को सिर्फ।
जस्ट ब्रह्मा।
फिर तो इसको कहते।
देन ही वुड हैव सेड दिस वन दैट इज इसको।
इसको न कह के इनको कहा।
इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वन ही सेड दीज वंस।
इनको माना।
दीज वंस मीन व्हाट।
बहुवचन में।
इट इज प्लूरल।
यानी कोई दो आत्माएं हैं कम से कम जो बैगर टू प्रिंस बनती है।
दैट मीन्स देर आर एटलीस्ट टू सोल्स हु बिकम प्रिंस फ्रॉम बीइंग अ बैगर।
आगे भी बनी थी।
दे बिकेम दैट बिफोर।
और अब भी बनी है।
एंड दे हैव टू बिकम दैट नाउ एज वेल।
तो इनको तो सब याद है। बतलाते हैं गांवड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना।
सो दीज वंस डू रिमेम्बर एवरीथिंग। ही सेज आई वॉज अ विलेज बॉय एंड बिकेम द मास्टर ऑफ हेवन।
छोरा कहाँ का था।
ही वॉज अ बॉय फ्रॉम विच प्लेस।
छोरा गंगा किनारे वाला।
द बॉय फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा मीनिंग छोरा गंगा किनारे वाला।
गीत भी बनाए दिए।
दे हैव ऑल्सो मेड सॉन्ग्स।
लेकिन वो गीत बनाने वाले तुम का अर्थ जानते नहीं।
बट द वंस हु मेड दैट सॉन्ग डोंट नो इट्स मीनिंग एट ऑल।
बैकुंठ में गांवड़ा कैसे होगा।
हाउ कैन देयर बी अ विलेज इन हेवन।
ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गांवड़ा है।
नाउ यू नो दैट दिस ओल्ड वर्ल्ड इज अ विलेज फॉर यू टू।
कहाँ बैकुंठ कहाँ ये नरक।
देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैराडाइज एंड दिस हेल।
मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख करके समझते हैं यही स्वर्ग है।
ह्यूमन बीइंग्स सी बिग पैलेसेस बिल्डिंग्स एटसेट्रा एंड थिंक दिस इटसेल्फ इज हेवन।
कौन से मनुष्य समझते हैं।
which human beings think this?
बाहर की दुनिया की सिर्फ मनुष्य समझते हैं ऐसा कि ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी ऐसे मनुष्य हैं.
Do only the human beings of the outside world think this, or there are such human beings in the confluence age Brahmin world too?
जो बड़ी बड़ी महल मारियां अटारियां बनाए लेते हैं करोड़ों रुपए की और फिर समझते हैं कि हम स्वर्ग में आए बैठे बाकी सारी दुनिया नरक में.
Who build big palaces, multi-storied buildings, mansions, etc. of millions of rupees and then think that they are sitting in heaven and the rest of the world is in hell?
Brahma Baba ne humko swarg de diya.
They think Brahma Baba has given us heaven.
Baap kehte hain ye to sab mitti patthar hain.
The father says all these are mud and stones.
Inki koi value nahi hai.
There is no value in them.
Value sabse jaasti heere ki hoti hai.
The most valuable is the diamond.
बाप कहते हैं विचार करो सचमुच में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे.
The father says, think how your golden palaces were in the golden age.
इस बात पर विचार करो.
Think about it.
अरे बता दिया सोने के महल थे तो इसमें विचार क्या करें.
अरे if he said there were palaces of gold, what is there to think about?
हैं? अरे सोने के महल थे तो सोने ही क्यों होंगे.
अरे इफ देयर वर पैलेसेस ऑफ गोल्ड देन श्योरली दे मस्ट हैव बीन ऑफ गोल्ड.
सोने की दीवारें होंगी सोने की ईंटें होंगी.
द वॉल्स विल बी ऑफ गोल्ड एंड द ब्रिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ गोल्ड.
इसमें विचार क्या करें.
वॉट इज देयर टू थिंक अबाउट इट.
हाँ सोना माने सच्चाई.
समवन मस्ट हैव सेड समथिंग. यस गोल्ड मीन्स ट्रूथ.
ईंटें माने आत्माएं.
Bricks means souls.
जो तैयार होती है ज्ञान योग की भट्टी में पकाई जाती है उन सोने की ईंटों के यानी सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी किले तैयार होंगे.
The souls who become ready, the souls who are baked in the bhatti, that is furnace of knowledge and yoga, the fort-like gathering of those gold bricks, meaning true souls will be formed.
संगठन रूपी महल बनेंगे.
Palaces like gatherings will be formed.
हम ही बनाएंगे.
We ourselves will make them.
Baba ki Srimat par banayenge.
We will make them with the help of Baba's Srimat.
Banwane wala baap baitha hua hai.
The father who has them made is sitting here.
To vichar karo satyug mein tumhare sone ke mahal kaise the.
So think how your palaces of gold were in the golden age.
Ye prashn kyon kiya?
Why was this question asked?
Kyunki koi koi samajh baithe hain ki satyug mein sone ke mahal honge.
It is because some think that there will be golden palaces in the golden age.
वहाँ महलों की दरकार है.
Is there any need for palaces there?
अरे वहाँ तो प्रकृति ही सारा कार्य करती है मनुष्यों को कोई कार्य करने की दरकार होती ही नहीं.
अरे their nature itself does all the work. Human beings don't have to work at all.
कपड़ा भी बनाने के लिए कोई वहाँ मिले नहीं होंगी.
There will be no mills to make clothes there either.
प्राकृतिक सौंदर्य होगा हर तरह का.
There will be natural beauty of every kind.
तो वहाँ तो सब खानियाँ भरी हुई होती हैं.
So all the mines are full there.
ढेर का ढेर सोना होता है.
There is a lot of gold there.
तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए.
So the children should be so happy.
कोई समय मुरझाई चाहती है तो बाबा ने समझाया.
If you ever feel down, then Baba has explained.
कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी मिला देंगे.
That there are some records, that is songs, that will immediately bring you back to happiness.
कौन से रिकॉर्ड?
Which records?
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया.
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया. Meaning, having found you, we have found the world.
इस रिकॉर्ड की गहराई को समझ लिया. क्या ऐसा कौन है जिसको पा करके हमने सारा जहाँ पा लिया.
If you understand the depth of this record, who is the one because of whom we find the whole world?
किसी माता को अगर ऐसा बच्चा मिल जाए जिस बच्चे के लिए ज्योतिषी बताए कि ये विश्व का मालिक बनने वाला है तो माता को कैसी खुशी होगी.
If some mother finds such a child for whom a fortune teller says that this child will become the master of the world, then how happy will that mother be?
अपार खुशी होगी.
She will have boundless joy.
इस बच्चे को क्या पाया जैसे सारे विश्व की बादशाही मैंने पाली.
She will think, by finding this child, it is like I have found the kingship of the whole world.
तो ऐसे ऐसे रिगार्ड्स बच्चों को अपने पास रखने चाहिए जो फौरन घुसी में ला दे.
So the children should keep such records with them that would instantly bring them into a state of happiness.
सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है. समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं.
The entire knowledge comes in your intellect. You understand. Baba makes us the master of the world.
वो मालिकाना कभी कोई हमसे छीन न सके.
No one can ever snatch that kingship from us.
आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते.
For half a cycle, we become the masters of the abode of happiness.
राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के मारे से.
The child of a king thinks that he is the heir of the limited kingship.
तुमको कितना रस नशा रहना चाहिए.
You should have so much intoxication.
हम देह के बाप के मारे से.
We are the heirs of the unlimited father.
देह की बादशाही के मालिक है.
We are the masters of the unlimited kingship.
बाप स्वर्ग की स्थापना करते.
The father establishes heaven.
हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते.
We become heirs for 21 births.
तो कितनी खुशी होनी चाहिए.
So how happy you should be.
जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है.
Certainly you should also remember the one whose heir you become.
क्या?
What?
करोड़पति का बच्चा होगा तो उसको करोड़ ही याद आएगा या करोड़ देने वाला भी याद आएगा.
If someone is the child of a millionaire, will he remember just the millions or will he also remember the one who gives him that?
करोड़पति का बच्चा सिर्फ करोड़ के ऊपर ही नजर रखेगा या करोड़ देने वाले बाप के ऊपर भी उसकी दृष्टि जाएगी.
Will the child of a millionaire have his eye only on the millions or will his vision also go on the father who gives him the millions? End of the cassette.